Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Giri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 ओम 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 कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद अंतर्गत छठे अध्याय में 15वां मंत्र है। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर् ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविधियः प्रधानक्षत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थितिवन्दहेतुः स तन्मयोऽयं ऋत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगोपुवनस्यास्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यता इह न ईशनाय यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् ममुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्वेताश्वतर उपनिषद की व्याख्या है, जिनको जानकर व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त होता है या जिसको जाने बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है, वो कैसा है? तो श्रुति ने कहा उस ज्ञेय ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं। ज्ञात ब्रह्म, ज्ञेय ब्रह्म और अज्ञात ब्रह्म, ये तीन प्रकार के ब्रह्म परमात्मा हैं। एक तो जो हमेशा ज्ञात हो रहा है, जो अज्ञात है, और दूसरा ज्ञेय है। ये ब्रह्म का स्वरूप यह है कि एको हंस, जीवात्मा को भी हंस कहते हैं और परमात्मा को भी हंस कहते हैं। और सन्यासियों को परमहंस कहते हैं। एको हंस, परमात्मा हंस है। हंस शब्द का अर्थ होता है हंति गच्छति इति हंस। हन धातु का आनन अर्थ है और स धातु का गमन अर्थ है। तो हंस हंति गच्छति इति हंस, हंति इति हंस, गच्छति इति हंस, हंसी अंति गच्छति इति हंसा। तीन प्रकार की व्युत्पत्ति संत लोग करते हैं। परमात्मा को हंस क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा यहां ये जो हंस कहा है यह भुवनस्य मध्य एक हंस है। सारे विश्व को एक शरीर माना गया तो उस शरीर के अंदर परमात्मा हंस के रूप में विद्यमान है। और आप हमारे एक शरीर एक एक शरीर है और इसके अंदर जीवात्मा हंस के रूप में विद्यमान है। एक को नाश करते हुए दूसरे में गमन करता है इसलिए उसको हंस कहते हैं। जागृत को नाश करके स्वप्न में जाता है, स्वप्नों को नाश करके सुषुप्ति में जाता है, सुषुप्ति का नाश करके समाधि में जाता है और समाधि से व्युत्थान होता है फिर जागृत में आता है। यह उस हंस की विशेषता है। इसलिए कहा सारे विश्व का एक समष्टि हंस है। और जो विश्व में व्याप्त होकर रहने वाला जो समष्टि हंस है यानी विराट की आत्मा, विराट एक समष्टि शरीर है और उस विराट शरीर की आत्मा वही तो हंस है। ये भुवनस्य मध्ये शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर व्याख्या की है। एक परमात्मा हंति अविद्यादि बंध कारणम इति हंस भुवनस्यास्य त्रैलोक्यस्य मध्ये नान्य कश्चित्। सारे जगत में अविद्या और अविद्या के कार्य को नाश करने की क्षमता वाला वही एक है, उसके अलावा और कोई भी तुम्हारी अविद्या को नाश नहीं कर सकता है। उस परमात्मा के अलावा जगत के कारणों को और जगत को नाश नहीं कर पाएगा। हम तो एक को एक बार नाश करते हैं फिर वो कहीं ना कहीं उसका बीज रह जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर नाश करते हैं बीज रह जाता है फिर आता है। हमने कई बार दृष्टांत दिया है। हमारा गुरु आश्रम दिल्ली में है, संन्यास आश्रम, विश्वनाथ संन्यास आश्रम। तम पहली बार वहां कथा करने गए, बहुत पुराना मंदिर है विश्वनाथ का। तो मंदिर के ऊपर शिखर में एक पीपल का पौधा उगाया और उसके चलते उसका जो जड़ है वो ईंटों के माध्यम से नीचे तक फैल गया तो बरसात में सब पानी नीचे मंदिर के अंदर पानी आने लग गया। तो पुजारी ने कहा कि महाराज ये तो मंदिर सब चू रहा है। तो आश्रम के व्यवस्था करने वाले जो व्यवस्थापक, हम लोग कोठारी बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उसने कहा कि नौकरों को लगाया जाओ सबको उखाड़ कर फेंको। तो बेचारे नौकर चले गए, शिखर में चढ़ गए और उसको उखाड़ने लगे। तो उखाड़ सके नहीं, क्योंकि जब वो इतना गहराई में जड़ में जड़ पकड़ रखा था कि वो उखाड़ने लगे तो उखड़े नहीं, वो सब टूट जावे। तो बहुत कोशिश किया तो पूरा जड़ तो उखड़ा नहीं, तो टूट टाट गया। नौकरों ने कहा कि हमने सफाई कर दी। उन्होंने व्यवस्थापक ने कहा सफाई कर दिया, बोले हाँ। दूसरे साल गए तो फिर जैसे कहते तैसे बरसात में वहीं से अंकुरित आ गए, क्योंकि वो तूस रह गया उसमें, जड़ रह गए, फिर आ गया। फिर पुजारी ने कहा कि पानी बारिश में पानी चू रहा है, फिर लगाया। तो जितनी बार भी उसको उखाड़ो वो पूरा का पूरा उखड़ता तो था नहीं, परिणाम ये हुआ कि ऊपर ऊपर से टूटता था, जड़ नीचे और गहराई में जा रहा था। तो इसका समाधान क्या होगा, बोले उसको जड़ से नहीं निकालोगे तब तक ये समाधान नहीं होगा। और जड़ से निकालने के लिए तो पूरे शिखर को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईंटों के ऐसे उसमें जड़ जड़ में घुस गया है, तो ऐसे निकलने वाला नहीं है, तो उसको नाश करना पड़ेगा। ऐसे तो निकलेगा नहीं वो, तो नाश करोगे कैसे करें। तो एक पुराना अनुभवी कोई गृहस्थ व्यक्ति वहां आए, पंजाब के थे, बड़े अनुभवी थे। उन्होंने कहा महाराज ये इसे नहीं जाने वाला है, इसमें हींग और चूना डाल दो। हींग और चूना मिलाकर उसको पहले काटो और उसके हींग और चूना ऊपर से डाल दो, तो उससे क्या होगा। बोले इसकी जीवन ही शक्ति खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो धीरे धीरे वो अपने आप सड़ के मर जाएगा, तो उसके बाद वो सड़ जाएगा उसकी जड़ें, फिर आप निकालोगे तो टुकड़े टुकड़े में निकल आएगा वो, नहीं तो नहीं निकलने आएगा। तो उन्होंने वैसे किया, चुना और हिंग डाल दिया उसमें, तो दूसरे साल नहीं होगा वो। तो धीरे धीरे जब उसका सड़ गया तो निकाल लिया, बाद में सब आ गया। तो वेदांत अविद्या और अविद्या के कार्यों को नाश करना चाहता है, लेकिन इसको जड़ से नाश करने की क्षमता केवल उस एक अहंस में है, उसके अलावा और किसी में भी नहीं है। हम चाहे जितनी ही कोशिश कर लें कि उसको ये जगत को नाश कर लें, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो एको हंस परमात्मा, वो अकेला है, वो हंस है, क्योंकि वह अविद्यादि बंध कारणानि हंति इति हंस। इसलिए मोह और माया और ममता को नाश करने वाले को ही परमहंस कहते हैं। आसक्ति का नाश करना, और इसीलिए षड्चक्र के चिंतन में हंस गायत्री का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अभ्यास करते हो कि नहीं षड्चक्र का चिंतन? प्रातः काल आप उठो, बैठो, सीधे आसन लगाओ और रीढ़ की हड्डी सीधा करो, और मूलाधार से लेकर सहस्त्र पर्यंत चक्रों का चिंतन करो। ये छह चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। इन छह चक्रों का क्रम से नीचे से ऊपर तक वेदन करते हुए सहस्रार में जाकर स्थिर होना चाहिए। और कौन से चक्र में कौन से देवता का स्थान है, मूलाधार में गणेश भगवान का स्थान है, पृथ्वी तत्व है, भूत तत्व में पृथ्वी तत्व है, और अधिदैव तत्व में गणेश का स्थान है, और अध्यात्म में मूलाधार है, मूल चक्र है, पहला चक्र है, और उसमें जो कमल का फूल है उसी में गणेश का निवास है, रिद्धि सिद्धि सहित। और ये कहते हैं कि हम अर्थात मनुष्य के बारे में कहा है, सामान्य मनुष्य 24 घंटे में 21,600 पटक श्वास लेता है और छोड़ता है, 21,600 बार श्वास लेना और छोड़ने का काम करता है। और ये श्वास लेना और छोड़ना वो कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं है, वैज्ञानिक लोग ये प्राकृतिक घटना मान सकते हैं, लेकिन अध्यात्म शास्त्र ये प्राकृतिक नहीं है। ये श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया के साथ आपका अजपा गायत्री जपा जा रहा है, लेकिन आप इस बात को नहीं मानते हैं कि मैं अजपा गायत्री जप रहा हूं। उस श्वास के गति और आगति में अजपा गायत्री की भावना आपकी नहीं है, इसलिए आपकी साधना नहीं हो पाती है। और सामान्य अध्यात्म साधना में यह कहा जाता है कि एक एक श्वास में एक एक गायत्री अजपा गायत्री का जप हो रहा है 21,600। ये सारे जप तुम 24 घंटे में सभी अर्पण करो, ऐसे 600 जप गणेश को अर्पण कर दो, वही गणेश की पूजा है, तुम और कैसे करोगे उस गणेश की। बाहर के गणेश को 1,000 लड्डू चढ़ाओगे, चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, दूबो चढ़ाओ, गुजराती में क्या बोलते हैं दूब को, क्या धरो बोलते हैं शायद, नहीं क्या दूरबा धरो, हाँ सौराष्ट्र में धरो बोलते हैं, क्यों हम सौराष्ट्र भावनगर खूब जाते हैं ना, तो वहां गणेश के जो है उत्सव होता है तो लड्डू चढ़ाते हैं, तो एक एक लड्डू हाथ में लो और एक एक दुबा लो दुर्वा, ओम गणपतये नमः मोदकम समर्पयामि, सिद्धि विनायकाय नमः मोदकम समर्पयामि, ढुंडी राजाय नमः मोदकम समर्पयामि, करो। वो सब कर सको या नहीं सको, कम से कम तुम्हारे द्वारा सहज रूप में श्वासोच्छ्वास से 21,600 बार जो गायत्री का जप हो रहा है वो 600 गायत्री गणेश को अर्पण कर दो, गणेश खुश हो जाएंगे। अजपा गायत्री की जप की विधि है, वहां विनियोग सहित संकल्प करके उसके चिंतन करते हैं छठ चक्र के। मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान जल तत्व है और चतुर्मुख ब्रह्मा का निवास है, उसके आगे मणिपुर चक्र है, तेज तत्व है, लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास है, इनको फिर 6,000 गायत्री का जप अर्पण करना पड़ता है। अनाहत हृदय चक्रदेश में अनाहत चक्र है, वहां पार्वती सहित शिव का निवास है, इनको भी 6,000, गणेश जी को 600, ब्रह्मा को 6,000, विष्णु को 6,000, पार्वती से शिव जी को 6,000। और उसके और आगे बढ़ो तो कंठ देश में जीव तत्व का निवास है, हम लोग जिसको जीवात्मा बोलते हैं ना, वह कंठ देश में रहता है, मुख्य रूप में उसका निवास स्थान कंठ देश है। और उस कंठ देश में जो हिता नाम के नाड़ी हृदय से सहस्रार पर्यंत बिना विभाग के ऊर्ध्व गति से गई हुई है, उस हिता नाम के नाड़ी के बीचों बीच में उदान वायु स्थिर होता है, वह उदान वायु के कंठदेश में हिता नाम के नाड़ी के अंदर स्थिर होना ही सारे जीवन ही है। और जब तक वो उदान वायु हृदय मन कंठदेश में विद्यमान है, हिता नाम के नाड़ी के अंदर, हाथ कट जाएगा तो भी नहीं मरेगा, पांव कट जाएगा तो भी नहीं मरेगा। हमको याद आ गया, यहां एक डॉक्टर आते थे, स्वाध्याय बड़े प्रेमी थे, हार्ट सर्जन थे वो, विनोद भाई, हाँ ये हाजी अली में रहते थे, बड़े प्रेमी थे, बहुत निष्ठावान थे, स्वाध्याय में भी बैठते थे प्रवचन में। उन्होंने कहा कि महाराज हमने तो कई ऑपरेशन के, हजारों ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी किए हैं, आप कहते हो कि आत्मा हृदय में रहता है, हृदय में रहता है। कई बार हमने ये छाती खोलकर उस हृदय को काटकर प्लेट में रखकर टेबल में रख दिया है, फिर भी नहीं मरता है। तो हृदय में रहता है आत्मा बोलते हुए क्या है? तो हमने कहा ये आत्मा हृदय में नहीं रहता है, जीव आत्मा कंठ देश में रहता है, हिता नाम के नाड़ी के अंदर उदान वायु के रूप में। और यदि आप जैसे हृदय काट दिया, हाथ काटा तो भी नहीं मरा कहते हो ना, वैसे आप गर्दन काट के देख लो मरता है कि नहीं मरता है। गर्दन काट लो और फिर वो बच जाए, फिर गर्दन जोड़ो, ये संभव नहीं, वो तो शिव के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। दक्ष प्रजाति प्रजापति के गर्दन काट दिया, डाल दिया और फिर जोड़ दिया, हाथी का सिर लाकर, बकरे का सिर लाकर, गणेश का सिर काट दिया, फेंक दिया, फिर जोड़ दिया, हाथी का सिर लाकर। अरे तुम क्या सर्जन, वो सर्जन तो वो है, इतना बड़ा सर्जन है भगवान शिव। तो कंठ देश में जीव का निवास है, उसको भी 2000 मंत्र अजपा जप का उसको अर्पण करो। और आज्ञा चक्र में गुरु का निवास है, गुरु को भी तुम्हें जो श्वासोच्छ्वास से जो अजपा गायत्री जपी जा रही है, गुरु को भी 2000 अर्पण कर दो। हो गया हिसाब? इस तरह जो अजपा जप हो रहा है, हमसह सोहम हमसह, ये अजपा गायत्री है, सोहम हमसह, वह मैं हूं, मैं वो है। इस अजपा गायत्री का अर्थ इतना ही, इसके अलावा और कोई नहीं। सो अहम अहम स, वो मैं हूं, मैं वो है। उसमें और हमारे में रंच मात्र भी भेद नहीं है। बस यदि भेद है तो केवल काल्पनिक भेद है, औपाधिक भेद है, स्वरूपतः उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं, ये भावना ही हमसे गायत्री का। और ये श्वासोच्छ्वास होता रहा है, परंतु इसमें भावना करो तो ये आपकी साधना हो जाएगी। भावना नहीं करोगे तो केवल आप लोगों ने देखा नहीं देखा हो, क्योंकि आप लोग गांव के शायद नहीं होंगे, शायद शहरों में भी दिखता है, ये सड़क के किनारे में जो लोहे का बर्तन बनाते हैं ना, लोहार सड़कों के किनारे खड़े होते हैं और लकड़ी के कोयला लाते हैं और हाथ से हवा करने वाला होता है, धोंकनी बोलते हैं उसको, है दमन। हाँ, अन्यथा यदि भावना नहीं करोगे तो आपका जीवन और उसका जीवन एक ही है। वो श्वासोच्छ्वास तो वो भी करता है ना, दमन तो वो भी करता है, लेकिन सोहम की भावना उसमें नहीं है। षड़ चक्रों की चिंतन वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि चक्र से निकाल दिया उसको, उसके चक्र ही नहीं, वो तो खाली छिलका है, खाल है। वहां न चक्र है, न गणेश आदि देवताओं का निवास है, न उससे सोहम की गायत्री अजपा गायत्री का जप है। तो यदि आपने श्वासोच्छ्वास में सोहम हमसा इस अजपा गायत्री का भावना नहीं की, तो आपका जीवन और उस लोहार के जो धोकनी है उसके जीवन में कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया है रामायण में, एको हमसह, जीवात्मा को भी हंस कहते हैं, क्योंकि ये भी जागृत को नाश करता है, स्वप्न में जाता है, स्वप्न को नाश करता है, सुषुप्ति में जाता है, सुषुप्ति को छोड़ता है, स्वप्न में आता है, स्वप्न को छोड़ता है, जागृत में आता है। इस तरह वह गमन आगमन करता है, एक शरीर को नाश करता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, दूसरे शरीर को नाश करता है, तीसरे शरीर में प्रवेश करता है, ये हंस, इसलिए इसका नाम हंस है, आता है और जाता रहता है। एको हंसो भुवनस्य मध्ये समष्टि भुवन स एव अग्नि सलिले सन्निविष्टः, वही जो समष्टि में हंस बनकर रह रहा है, वही व्यष्टि में भी हंस बनकर रह रहा है। स एव हंस एव सलिले अग्नि सलिले सन्निविष्टः, भगवान शंकराचार्य जी ने सलील शब्द का अर्थ किया है शरीर। सामान्य शब्दार्थ सलिल का अर्थ होता है जल, पानी। और वह हमसे क्या पानी में बैठा है? तो बोले नहीं नहीं शरीर में बैठा है। महाराज ये शरीर और पानी का क्या संबंध है? तो शंकराचार्य जी ने कहा कि इस बात को समझने के लिए तुम्हें चांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या पढ़नी चाहिए, तब समझ में आएगा ये शरीर पानी ही है। आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने बृहदारण्यक स्वाध्याय प्रातःकालीन स्वाध्याय में पंचाग्नि विद्या पढ़ी होगी। स्वाध्याय में शायद हम ही नहीं स्वाध्याय पंचाग्नि विद्या को हमने ही प्रतिपादन किया था। हमारे समय में जब हम आए थे तभी वो पंचाग्नि विद्या का प्रकरण चल रहा था। और पता नहीं हमसे पहले कोई साधु थे, उन्होंने जो है कह दिया कि पांचवी अग्नि की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, तुम पढ़ लेना करके छोड़ दिया कहते हैं। क्योंकि पांचवी अग्नि बड़ा विचित्र की अग्नि है, पांचवी अग्नि। तो हमने कहा नहीं नहीं पांचवी अग्नि भी समझनी चाहिए, तुम उसको आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करो। तुम लौकिक दृष्टि से क्यों विचार कर रहे हो? शास्त्र चिंतन करने बैठे और लोक वासना से तुम शास्त्र का चिंतन करने लग जाओगे तो शास्त्र की यथार्थ व्याख्या तुम कैसे समझ पाओगे? थोड़ा लौकिक भावना से तुम ऊपर उठकर उसकी व्याख्या करो तो कोई समस्या नहीं है। तो हमने पांचवी अग्नि की व्याख्या कर दिया था। तुम कहोगे कि आज कर दो, ये अप्रासंगिक हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में पंचाग्नि विद्या का प्रसंग है। उद्दालक आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु जब राजा प्रवाहण के यहां गए तो राजा प्रवाहण ने पहले प्रश्न किया कि अरे विप्रवटुक ब्राह्मण बालक, तुमने इसके सभी शास्त्र पढ़ ली, सभी विद्या पढ़ ली? बोले हां हम सब शास्त्र के पारंगत हैं, चतुर्दश विद्या हमने पढ़ ली है। तो बोले कि उसके साथ साथ में तुमने वो विद्या भी पढ़ ली है जिसके माध्यम से पानी पुरुष नाम का होकर खड़ा होता है, पानी पुरुष होकर खड़ा हो जाता है, वो विद्या तुमने पढ़ी? बोले वो तो हमने नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़ा तो फिर काहे को अहंकार करते हो? श्वेत केतु तो घमंडी था, ये बात तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, विद्या का घमंड था उसके सामने। तब उसको ऐसा अपमान महसूस हुआ कि एक सामान्य गृहस्त राजा ने पूछा हुआ प्रश्न का मैं उत्तर दे नहीं पा रहा हूं, तो वह अपमानित आहत होकर घर लौट के आया। पिता ने पूछा कि बेटा क्या बात है? बोले राजा ने मेरा अपमान किया। किस बात को लेकर? बोले मेरे से प्रश्न कर लिया। तो प्रश्न कर लिया तो उत्तर देना था? बोले यही तो समस्या होगी, मैं उत्तर दे नहीं पाया। तो बोले क्या प्रश्न किया था? तो प्रश्न ये था भाई